महाबंद पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धे शुद्ध बुद्धि अलद्ध सौवत्था तिमवण शिरसे हरया कसियंतु बड़ारया सौवे। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध सिद्धांत शास्त्र है। इसी का दूसरा नाम है महाधवल। उसमें प्रथम पुस्तक जो है प्रकृति बंधाधिकार, उसकी बात देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 35 पर आ गए। 35 कल हमने सभी कर्मों के नाम भी देखे थे और उसका साधारण स्वरूप भी देखा था। मूल प्रकृतियां देखी थी और उसकी कितनी कितनी उत्तरी उत्तर प्रकृतियां होती है उनके नाम देखे थे। अब यहाँ प्रकृति समुत्कीर्तन तो हो गया, अब सर्व बंध और नौ सर्व बंध की प्ररूपणा चल रही थी अपनी। जो मूल प्रकृति की सभी उत्तर प्रकृतियों का बंध होना उसको कहेंगे सर्व बंध, और जितनी उत्तर प्रकृतियां उसमें से कुछ बंधेगी कुछ नहीं बंधेगी तो उसको कहेंगे नौ सर्व बंध। ज्ञानावरण और अंतराय की पांच पांच उत्तर प्रकृतियां हैं और वो सभी बनती है जहां बंधे, दसवें गुण स्थान तक बंध है तो उसका अनादि से ध्रुवबंदी जिसको कहते हैं अपनी विच्छित्ति के अंत समय तक उसका बंध होता रहता है और सभी का होता है तो उसको कहेंगे सर्व बंध। दर्शनावरण में तो है तो उनकी नौ प्रकृतियां परंतु उसमें जो स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला है उनकी बंध विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में होती है तो अनादि से वो बनती आ रही है। कोई जीव मिथ्यात्व में है तब तक तो बनती रही नौ के नौ, तब तक तो हम कहेंगे सर्व बंध। एक बार सम्यक तो प्राप्त किया तो वो तीन नहीं बन रही थी नौ सर्व बंध, फिर वापस दूसरे में आया गिरकर तो नौ के नौ बंधने लगी तो हम कहेंगे सर्व बंध। तो जो सम्यक तो प्राप्त करता है तो छह बंधेगी, आठवें गुण स्थान तक तो छह बंधेगी, पहले भाग में निद्रा प्रज्वला की बंधे विच्छित तो उसके बाद चार बंधेगी। ये हमने कल पढ़ा था यहाँ तक प्रश्न और उत्तर, फिर वह पढ़ते हैं हम 35 पृष्ठ पर। प्रश्न पूछा था दर्शनावरण कर्म का सर्वबंध है या नौ सर्वबंध है, तो कहते उत्तर उसका संपूर्ण प्रकृतियों के बंध करने वाले के सर्वबंध होता है, यानी पहले दूसरे गुण स्थान वाले के। सर्व प्रकृतियों में से न्यून प्रकृतियों के बंध करने वाले के नौ सर्वबंध है। अभी वो कहां क्या है वो अभी अभी हमने देख लिया, अभी यहां से आगे पढ़ेंगे। मोहनीय तथा नाम कर्म में दर्शनावरण के समान जानना चाहिए, अर्थात सर्व प्रकृतियों के बंध करने वाले के सर्व बंध और कुछ न्यून प्रकृतियों के बंध करने वाले के नौ सर्व बंध होता है। तो मोहनीय में सर्व बंध किसको होता है, किसी को नहीं होगा क्योंकि मिथ्या तो सोलह कषाय भय जुगुप्सा तो बनती है और वेद में से एक बंधेगा, ऑप्शन है लेना, और युगल में से एक युगल बंधेगा, 19 और 3 22 बंधेगी, सभी 28 तो किसी की बंधेगी ही नहीं, और उसमें से समय प्रकृति समय मिथ्या तो वो तो बंध योग्य है ही नहीं है, उदय योग्य और सत्व योग्य है। नाम कर्म की भी कभी सभी प्रकृति किसी को नहीं बंधेगी, हमने देखा 23 बंधेगा या 25 बंधेगा 26 जिसकी जो गति सहित जो बंध हो रहा है, हमने बंध स्थान अभी चल रहे ना अपना विषय कर्मकांड में, 23 का है बंदर, 25 का, 26 का, 28, 29, 30, 31 और एक, ये अलग अलग बंध स्थान है। नाम कर्म की इतनी प्रकृति एट ए टाइम बनती है। जैसे एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध कर रहा है तो वो जीव 23 प्रकृतियां बांधेगा, एक इंद्रिय पर्याप्त का बंध कर रहा है तो 25 बांधेगा, या इंद्रिय पर्याप्त में भी वो बांधेगी, एक इंद्रिय पर्याप्त सहित आतप या उद्योग बांधेगा तो 26 बांधेगा, जो देवगति नरक गति बांध रहा है वो 28 प्रकृति एट ए टाइम बांधता है, मनुष्य तिर्यंच सामान्य रूप से तो 29 बांधता है, और उसी में उद्योग सहित तिर्यंच का बंद करेंगे तो 30 का बंद करेंगे, जो देव गति तीर्थंकर और आहारक दिख इनका बंद करता है वो 31 बांधता है, और सबकी बंदी उचित होती है 8वें से 6वें भाग में, 8वें से 7वें भाग से लेकर 10वें तक यशस कीर्ति एक ही बनती है, तो उसको एक प्रकृति का बंध हो रहा है, तो सभी के सभी तो किसी को नहीं बंधेगी, तो उसको नौ सर्व बंध ही रहेगा, है ना? ये सर्व नौ सर्व का अर्थ है। वेदनीय गोत्र तथा आयु कर्म में क्या सर्व बंध है अथवा नौ सर्व बंध है, तो कहते हैं नौ सर्व बंध है, क्योंकि वेदनीय की दो प्रकृतियां एट ए टाइम एक ही बंधेगी, या तो साता बंधेगी या असाता। तो मेरा प्रश्न है मंजू बेन, साता या असाता का ऑप्शन कहाँ तक है? बंदेगी तो एक तो निश्चित है, बहुत अच्छा, छठे, क्योंकि छठे गुणस्थान में असाता की बंध विच्युति होती है तो आगे मात्र साता का ही बंध होगा। वैसे गोत्र में भी उच्च गोत्र नीच गोत्र है, तो ये ऑप्शनल कहाँ तक है? दूसरे, नीच गोत्र की बंध विच्युति दूसरे में होती है। आयु कर्म में वो तो कोई एक ही आयु बनती है, जब बन रही है एक किसी आयु का बंध होता है, वो भी नौ सर्व हो गया, तो ये सभी
ऑप्शन कब बंद होगा?
ऑप्शन कब बंद होगा? अच्छा, कहाँ कौन सी बंध विच्छित होती है? हाँ, पहले में, हाँ मयंक भाई बता रहे, बोलो बोलो। हाँ, नरकायु की बंध विच्छित पहले में, हाँ तीन चाहिए दूसरे में, मनुष्यायु चौथे में, बहुत अच्छा, क्योंकि देवनार की बांध रहे हैं ना, हाँ, और देवायु सातवें तक के आगे आयु नहीं बंध, क्योंकि जहाँ बहुत विशुद्धि है वहां आयु का बंधन नहीं होता, देव गति 8वें तक बनती है। विशेष अर्थ, साता असाता वेदनीय उच्च नीच गोत्र इन युगलों में से किसी एक का बंध होगा तथा अन्य का अबंध होगा। इसी प्रकार आयु चतुष्टय में से अन्यतम का बंध होगा, शेष का अबंध होगा। इसलिए वेदनीय गोत्र तथा आयु का नौ सर्व बंध कहा है। आदेश से यानी अभी विशेष से मार्गणाओं में यह क्रम अनाहारक पर्यंत जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनुदिश से सर्वार सिद्धि पर्यंत देवों में दर्शनावरण तथा मौन्य का नौ सर्वबंध होता है, क्योंकि वहां तो सारे सम्यक दृष्टि, इसलिए उस अपेक्षा से बताया। इस कथन को आगे भी अन्य मार्गणाओं में सर्व नौ सर्वबंध का बीजभूत समझना चाहिए। अन्य मौनीय के नहीं, ये उन्होंने विशेषार्थ में निकाला है, मूल में तो ऐसा नहीं था। ऊपर तो इतने ही लिखा है, देखो ऊपर ऊपर देखते, ऊपर मौनीय का नाम नहीं डाला है, सेकंड लाइन एवं याव अनाहारगति, अनाहारक मार्गणा तक ऐसा ही समझना चाहिए। अनाहारक मार्गणा तक यानी क्या? सभी 14 मार्गणा ली, तो गति मार्गणा में समझना, जो जिस गति में जितने गुणस्थान है, जितना जहाँ सर्व बंधन हो सर्व बंध है वहाँ ऐसा ही समझना। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा जो जहाँ बंध होता है वो कहेंगे वहाँ पर उनमें भी ज्ञानावरण और अंतराय में तो सर्व बंध ही कहेंगे। नवरी, नवरी का अर्थ क्या? इतनी विशेषता, इन्हें क्या डिफरेंस है वो बताते। अनुदिशा याव सौवठत्ती यानी अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक यानी अनुदेश और अनुत्तर विमानों में यानी वहां के देवों में दंशनावरण से 900 बंधो। अभी हम मोनिया का नाम डाला नहीं था, हम मोनिया का तो ऊपर है ही नहीं है और मोनिया का कभी सर्वबंध होता ही नहीं है, सभी प्रकृतियां तो बनती ही नहीं उसकी। बराबर है, हाँ, परंतु यहाँ दर्शनावरण का वहाँ ऊपर होता है, वहाँ अगर मोनिय का नाम डालेंगे तो इसका अर्थ होता है अन्यत्र मोनिय का सर्वबंध होता है, ख्याल में है ना? क्या मोनिय का तो नौ सर्वबंध वहाँ पर भी होगा, वहाँ की क्या बात, यहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि को भी नौ सर्वबंध होगा। वहाँ नौ, वहाँ मोनिय नाम डालने से वहीं पर केवल बाकी जगह हो सकता है सर्वबंध, ऐसा अर्थ निकला। तो वहाँ मोनिय का नाम ऊपर था नहीं, जो इन्होंने नीचे कहाँ डाला, विशेषता यह है कि अनुदिश से सर्वार सिद्धि पर देवों में दर्शनावरण का नौ सर्वबंध होता है, ये मोनिय का ऊपर है ही नहीं है। अभी जो कुछ करना है पेंसिल से करो अपने समझने के लिए।
ये जो उत्तर लिखा है ना, अब काम हो रही है।
देखो विशेषार्थ का दूसरा पैराग्राफ, विशेषार्थ तो तीन लाइन का है, वहाँ उसके आगे जो है वो ट्रांसलेशन है, आदेश से यह क्रम अनाहारक पर्यंत जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनुदिश से सर्वार सिद्धि पर्यंत देवों में दर्शनावरण का, बीच में तथा और मोहनीय ये दो शब्द निकालना, का रखो, दर्शनावरण का नौ सर्वबंध होता है और उसके लिए ऊपर रेफरेंस है, वहां तो केवल एक का ही नाम है। एवेन बीजेन नेदवम, यानी ये बीज पद है, यानी ये तो एक क्या कहेंगे, एक रीजनिंग जो है वो आगे भी ऐसा ही समझना। तो कहते इस कथन को आगे भी अन्य मार्गणाओं में सर्व नो सर्वबंध का बीजभूत समझना चाहिए। ये जो सर्वबंध और नो सर्वबंध का कथन है वो सभी में इसी प्रकार से लगाना चाहिए। एक नियम बता दिया उन्होंने, बीजभूत यानी वो नियम बताया, वही सर्वत्र एप्लीकेबल है। हाँ बोलिए,
प्रश्नोत्तर जो है,
प्रश्न ऊपर का प्रश्न उत्तर था,
थर्ड लाइन से उत्तर में
नाम कर्म
दक्षिणावरण के समान जाना चाहे तो सर्व प्रकृतियों के बंध करने वाले सर्वबंध
और कुछ न्यून प्रकृतियों के बंद करने वाले के नो सर्वबंध होता है।
अभी मोनी में तो सर्वबंध होता ही नहीं है,
नहीं होता ना, परंतु यहाँ कैसे लगाया पता नहीं।
और नाम कर्म के भी सर्व बंध नहीं होता,
नहीं इसी प्रकार समझना चाहिए, नहीं उसमें नहीं होता, ये तो बात हो जाती है। नहीं नहीं, ये प्रश्न ये क्या लगाया उन्होंने, ऐसा ही जानना चाहिए, उसके आगे के लाइन देखना प्राकृत में देखो, 34 पेज पर लास्ट लाइन, सव्वा उपगदियों बंध मानस सव बंधो तदुन बंध मानस नौ सव बंधो, यानी उन्होंने रूल क्या बंधा, जहाँ सभी प्रकृतियां बनती है उसको सर्वबंध कहेंगे और जहाँ सभी नहीं बनती उसको नौ सर्वबंध कहेंगे। तो यही बात मोनिय नाम कर्म में समझना चाहिए, परंतु दर्शनावरण में तो कहीं कहीं नौ सर्वबंध तो हो सकता है पहले दूसरे गुण स्थान में, वैसा तो मोनी में होगा नहीं।
ट्रांसलेशन,
हाँ जो है उससे थोड़ा अधिक डाला है
क्या,
नो सर्वबंध है, नो सर्वबंध ही है, किसी को एट ए टाइम सभी प्रकृतियां बंधेगी ही नहीं, बिल्कुल नियम है। हाँ अर्थात जो है ना, नौ सर्वबंध है, परंतु उसमें से ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि किसी को सर्वबंध भी होता होगा, नहीं होता है।
यहाँ पर जो आपने अभी बताया जो उत्तर के नीचे तीसरी लाइन में दर्शनावरण के समान जानना चाहिए,
यानी उन्होंने दर्शनावरण के लिए ये प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था देखो,
लेकिन मैं ये कह रहा था कि दर्शनावरण में तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सर्वबंध
नौ सर्वबंध,
दोनों में तो सिर्फ
नौ सर्वबंध ही है, ये तो नक्की है।
तो फिर समान जानना चाहिए लिखा है, इसके गड़बड़ होगी।
यानी वो ये क्या समान जानना चाहिए कि सर्वबंध और नौ सर्वबंध की जो परिभाषा है वो उनके लिए भी वैसे ही लागू होगी। अभी हम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की ओर बढ़ेंगे। सर्व नौ सर्वबंध की बात हो गई, अब बंध में उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध। जब अनुत्कृष्ट कहेंगे जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा ही अनुत्कृष्ट, यानी जघन्य भी है वो अनुत्कृष्ट कहेंगे। और यहाँ तो प्रकृतियों की बात चल रही, ना प्रदेश की है ना स्थिति की है, मात्र प्रकृतियों की बात चलेगी यहाँ पर। तो उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध प्ररूपणा, इसी प्रकार उत्कृष्ट बंध तथा अनुत्कृष्ट बंध में भी जानना चाहिए विशेष। सर्वबंध नौ सर्वबंध में ओघ तथा आदेश से जैसा वर्णन किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। अब यहाँ प्रकृति में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्या लेना है, तो उसकी संख्या ही ले सकते हैं, संख्या ही हो सकती है। जैसे अगर प्रदेशों में प्रदेशों की संख्या गिन सकते हैं, अनुभाग में उत्कृष्ट अनुभाग का बंध दे सकते हैं, स्थिति में उत्कृष्ट स्थिति देख सकते हैं, ऐसे यहाँ प्रकृति में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्या कुछ नहीं कह सकेंगे। वहां तो कितनी प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा कितनी बंध, हाँ ऐसे लगा सकते हैं क्या सभी बन रही है, जिसको हमने सर्व कहा उसी को उत्कृष्ट कहेंगे, नो सर्व कहा तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। थोड़ा डिफरेंस है जो हमने धवला में भी उसकी बात चर्चा की थी, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट संबंधी भी। अब उसके बाद और कौन सी प्ररूपणा होगी, जघन्य बंध और अजघन्य बंध। प्रकृतियों में ही ये बात लगानी है, तो जो जघन्य बंध तथा अजघन्य बंध है उसका ओग तथा आदेश से दो प्रकार से निर्देश करते हैं। तो कहते ज्ञानावरण अंतराय का क्या जघन्य बंध है या अजघन्य बंध है, अजघन्य बंध है। दर्शनावरण मौनी तथा नाम कर्म का क्या जघन्य बंध है या अजघन्य बंध है, तो कहते जघन्य बंध है तथा अजघन्य बंध है। जैसे हम उत्कृष्ट सर्व की अपेक्षा जहाँ सर्व कहा था वहां उत्कृष्ट हम कहेंगे, और नौ सर्व का अनुत्कृष्ट कहा। अभी यहाँ दर्शनावरण में तो तीन अलग अलग है ना, नौ का बंध, छह का बंध या चार का बंध। तो जो चार का बंध जहाँ होता है उसको हम कहेंगे जघन्य, और बाकी जो छह और नौ दोनों को मिलकर कहेंगे अजघन्य। उत्कृष्ट की बात आई तो नौ का बंध होता है तो कहेंगे उत्कृष्ट, और छह और चार को कहेंगे अनुत्कृष्ट। वेदिनी आयु तथा गोत्र का क्या जघन्य बंध है अजघन्य बंध है, तो कहते हैं जघन्य बंध है। अभी इसको सर्व का कुछ भी अपेक्षा से उसको कह सकते हैं। अनाहारक मार्गणा पर्यंत इसी प्रकार जानना चाहिए। अब उसमें सादि अनादि ध्रुव अध्रुव बंध प्ररूपणा, जो सादि अनादि ध्रुव अध्रुव बंध है उसका ओह तथा आदेश से दो प्रकार का निर्देश है। यह तो उसका अर्थ नहीं समझाया है, तो सादि बंध अभी प्रकृतियों में लेना है हमको, तो प्रकृतियों का सादि बंध पहले नहीं बनती थी और अब बंधने लगी तो हम कहेंगे सादि बंध है। अनादि से ही जो बनती आ गई उसको कहेंगे अनादि बंध है। अब ध्रुव बंध और अध्रुव बंध, तो ध्रुव बंध यानी अपनी इच्छिति तक लगातार बनता रहे तो उसको कहेंगे ध्रुव बंध, और अध्रुव बंध वो तो बंद की उच्छित्ति भी हो जाएगी और चला जाएगा, जो भव्यों में तो कहेंगे अध्रुव बंद है, क्योंकि कभी तो मिट जाता है। अभव्यों में तो ध्रुव बंद ही रहेगा, जैसे ज्ञानावरण की अभिख्यात की जो बात है तो ध्रुव बंद कहेंगे। अब ऐसा ना, ये जो बातें हैं उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा या मूल प्रकृतियों की अपेक्षा अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। मूल प्रकृतियों पर घटित करना है तो ज्ञानावरण प्रकृति का बंध हम एक एक पर घटित करेंगे। सादि है क्या अनादि है? अब क्या कहते हैं?
अनादि और सादि
दोनों है। क्यों? अनादि तो है ही है। उपशम श्रेणी में 11वें में गया तो बंध रुक गया था, और फिर 10वें में आया तो सादि हुआ था, तो उसमें अनादि भी घटित होता है, सादि भी घटित होता है। अब ध्रुव है कि अध्रुव है? 10वें तक तो ध्रुव था, और फिर जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के उसके अध्रुव हो जाएगा, और जो मोक्ष चला जाएगा उसके लिए भी अध्रुव हो जाएगा। अब उनके लिए वो ध्रुव कहेंगे उसके। ये चार भेद होते हैं उसके, तो हर एक प्रकृति पर ऐसा घटित कर सकते हैं। तो वेदनीय का भी, वेदनीय में अगर हम कहेंगे तो वो तो बंध रही है, परंतु उसमें उत्तर प्रकृति उनकी अपेक्षा देखेंगे तो उसको हम अध्रुव कहेंगे, सादी कहेंगे। साता वेदनीय असाता वेदनीय एक ले लो, क्या अनादि से बंध रहा है? एक एक साता वेदनीय क्या अनादि से बंध रहा है? नहीं, कभी असाता कभी असाता कभी साता कभी असाता, तो उसको अध्रुव और सादी कहेंगे। किस तरह सोचना इसकी बात है। अब मिथ्यात्व का बंध अनादि का है और सादी भी है, क्योंकि एक बार समय तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गया तो उसके सादी, उसके लिए सादी होगा। अब जो सादी है तो नियम से वो नष्ट होने वाला है तो अध्रुव कहेंगे। पहले तो अनादि से तो ध्रुव था, भव्य में तो अध्रुव हो जाता है। इस तरह हर एक पर सोचना, यानी मूल प्रकृतियों के लिए अलग लगाएंगे, उसमें तो आयु के लिए वो सादी कहेंगे, बाकी मूल प्रकृति है सच, उसमें भेद किए बिना। ज्ञानावरण कब से बन रहा है, मोहनी कब से बन रहा है, वेदनी कब से बन रहा है, तो अनादि से बन रहा है, और आयु कभी कभी बनती है तो वो सादी है। उत्तर प्रकृतियों में जो जितने हम उसका विस्तार से देखेंगे उसकी बात उसमें निकलेगी। अब यहाँ क्या कहते हैं हम देखेंगे इसको।
ध्रुव में तो जब तक विच्छुति होती है,
विच्छुति होने तक अनादि से जो बनता है उसको ध्रुव कहेंगे। अब ज्ञानावरण अनादि से बन रहा था, विच्छुति होने तक वो बनती ही रहती हर समय, उसको कहेंगे ध्रुवबंदी प्रकृतियां। तो ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां बताएंगे आप आश्रम में? अरे एकदम वहाँ ज्ञानावरण से शुरू करो, कहाँ पहुँच गए एकदम।
ध्रुवबंदी,
हाँ ध्रुवबंदी,
ज्ञानावरण
की पांच,
अंतराय की पांच,
अंतराय की पांच,
दर्शनावरण की सभी ध्रुवबंदी नहीं है,
सभी है, क्योंकि विच्छित्ति होने से हम नव के नव ध्रुवबंदी कहेंगे। अच्छा। उसकी परिभाषा ही है, जब तक विच्छित्ति नहीं होती तो सभी बनती है। हाँ दर्शनावन की नहीं, ये तो कितनी हुई, 19 तो ये हुई। हाँ अभी मोनी की बोले, वो भी 19 है। मिथ्या तो 16 कशार भय चुके, तो ये 19, 19, 38 हो गए। अभी आपको 47 है टोटल, गिनो आगे की। नहीं अभी बाकी सब नाम कर्म की है, बोलो अभी कितने, अभी कितने हमने 38, हाँ ध्रुवबंदी 9 है, बोलो तेजस कर्मण, वर्णादि 4, अगुर लघु, उपघात और निर्माण। नहीं नहीं देखो फिर से, तेजस कर्मण, वर्णादि 4, अगुर लघु, निर्माण और उपघात, ये 9 ध्रुवबंदी हुई, तो टोटल 47 है। अनादि से ये बनती है हर समय, जब तक अपनी अपनी विच्छित्ति नहीं होती। क्या कहते हैं? हाँ
अध्रुव को क्या कहते हैं?
अध्रुए ने भव्य जीव है, अभी सम्यक तो प्राप्त करेगा, ये जो कुछ है अभी जो नौ बनती थी तो नौ में से तीन की बंधु विचित हो गई, तो वो तीन के लिए अध्रुव कहेंगे, या बाद में वो आगे चलकर क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, मोक्ष चला जाएगा, तो उसके वो बंध रुक जाएगा कभी न कभी, तो उसको अध्रुव कहेंगे। अभव्यों के लिए सभी जो उसको ध्रुव ही रहेंगे, यानी इतने प्रकृतियों में ये ध्रुव बंध सिद्ध होता है, बाकी प्रकृतियों में वो अध्रुव, क्योंकि प्रतिपक्ष जो बनती है ना, नाम कर्म की इतनी ली हमने, औदारिक शरीर हो, एकरिक शरीर है, या गति है, कभी देवगति बनती है, कभी नरक गति बनती है, गति असच तो बनती है, परंतु उसमें से विशिष्ट गति अनादि से नहीं बन रही है, मिथ्या दृष्टि को चारों गतियों में से कोई ना कोई कभी न कभी बन रही है, हाँ, तो उसको तो बाकी प्रतिपक्ष वगैरह में ले लिया। इसमें शायद आएगी बात आगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बंध है उसका ओघ तथा आदेश से दो प्रकार का निर्देश है। ये कर्मकांड जो है ना, अभी हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो शुरुआत में हमने ये सभी पढ़े हैं और उसमें बहुत सरल करके समझाया भी है। सादी बंध का यह अर्थ पद है कि, यानी उसका अर्थ क्या है, सादी बंध किसको कहना, कि एक कर्म अर्थात आयु कर्म का, छह कर्मों का अर्थात वेदिनी को छोड़कर शेष ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनीय नाम गोत्र तथा अंतराय रूप छह कर्मों का बंध विच्छिन्न होने के पश्चात पुनः बंध होना सादी बंध है। ऊपर क्या लिखा है, इमो मट्टपद एक्का वा छा वा पगदियो वो छिन्ना, ये मूल प्रकृतियों की बात है। आयु कर्म की अपेक्षा क्या हो रहा है कि उसका बंध नहीं था और फिर शुरू हुआ है, क्योंकि उसको सादी है। या अन्य छह कर्मों में वेदनियों को क्यों छोड़ा, हाँ मंजू बेन आप कहें, वेदनियों को छोड़कर अन्य छह के बारे में कौन से गुणस्थान थे, कहाँ तक, तेरहवें, वो वापस आता है नीचे, यानी यहाँ बाकी छह को क्यों लिया, कौन से गुणस्थान की बात है ये, हाँ तो ग्यारहवें में वेदनी का बंध चल रहा है, उसका बंध रुकता नहीं है, यानी ये ग्यारहवें से ही वापस आता है। अन्य छह के लिए शादी कहाँ होगा, ग्यारहवें से लौटकर जो दसवें में आता है उनके लिए छह कर्मों का बंध शादी है। यह मूल प्रकृति और परिघटित किया है, ये बात समझ में आ रही है। देखो दसवें तक क्या, पहले तो आयु तो कभी कभी बनती, उसको तो शादी बताई दिया, अब दसवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, मूल प्रकृतियों की हमने मूल प्रकृतियां पूछी, हाँ छह प्रकृतियों का हो रहा है, क्योंकि मुनि का नहीं हो रहा है ना वहां पर, छह का हो रहा है, अब छह का बंध हो रहा है, अब हो गया ग्यारहवें में, तो ग्यारहवें में तो वेदिनी को वहीं पर छोड़ो, यहाँ आयु और मोनिय नहीं बन रहे थे, बाकी छह बन रहे थे, वो ग्यारहवें में गया तो वेदिनी तो बनता ही रहा, बाकी सब बंध रुक गया अन्य पांच का, अब वो दसवें में आए तो पांच का बंध तो चालू हो गया, और फिर नौवें में आए तो छह का बंध हुआ, मोनिय वहां पर भी बंधना शुरू हुआ, समझ में ही बात नहीं, तो इसलिए ये छह का कैसा है, सादी बंध भी हो सकता है, अनादि तो था ही था, परंतु ग्यारहवें से वापिस लौटे तो पांच का शुरू हुआ सादी, और नौवें में आया लौट कर तो मोनिय का भी शुरू हुआ, तो वहां वो सादी हो गया, इसी को कहते हैं छह कर्मों का बंध विच्छिन्न होने के पश्चात। मोनिय का बंध विच्छिन्न कहा हुआ, नौवे में और पश्चात इनको दसवें ग्यारहवें करके लौट कर फिर नौवे में आया है, तब जाके फिर दोबारा मोनी का बंध शुरू हुआ, और बाकी पांच का दसवें तक बंद था, ग्यारहवें से लौटकर फिर दसवें में आया तो फिर उसका शादी बंद हुआ। अब इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे। आयु का निरंतर बंधन नहीं होता, अब ये विशेषार्थ में बताया है, परंतु जो निरंतर बंधी प्रकृतियां हैं उसमें आयु को लिया है, क्योंकि बदलना पड़ेगा। क्योंकि निरंतर, जो निरंतर बंधी किसको कहना, उसकी डेफिनेशन ये है कि जो मिनिमम अंतर्मूर्त जब बंधना शुरू होता है तो लगातार अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही नियम से, उसको कहेंगे निरंतर बंधी। ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां बोलो अश्विन भाई। हाँ निरंतर बंधी। हाँ बोलो बोलो। तीर्थंकर, आयु, आहारक है ना, ये कैसी है, निरंतर बंधी, यानी एटलीस्ट अंतर्मूर्त तक लगातार बंधेगी ही बंधेगी। विशेषार्थ है ना, आयु का निरंतर बंध नहीं होता,
उसका निरंतर का अर्थ हमेशा ही
हमेशा। आयु का बंध होकर रुक जाता है, पुनः बंध होता है, अतएव इसको शादी बंध कहा है। शास्त्र में निरंतर बंधी प्रकृतियां भी जो आती है तो वो अलग है। यानी उसकी बिगिनिंग है ना, नहीं बंध रही थे और बंध रही, इसलिए शादी का। सदा बंध न होने के कारण अध्रुव भी है, ध्रुव तो बनता ही रहता है अनादि से ही, और ये सदा नहीं बनती तो उसको अध्रुव कहेंगे। आयु के विषय में गुमटसार कर्मकांड में लिखा है कि भुज्यमान आयु के उत्कृष्ट छह मास अवशेष रहने पर देव तथा नार की मनुष्यायु व तिर्यंचायु का बंध करते हैं। भोग भूमिया जीव छह मास अवशेष रहने पर देवायु का ही बंध करते हैं। मनुष्य तथा तिर्यंच भुज्यमान आयु का तीसरा भाग अवशेष रहने पर चारों आयु का बंध करते हैं, यानी चारों आयु में से किसी का। तेज कायिक तथा वात कायिक जीव एवं सप्तम पृथ्वी के नार की तिर्यंच आयु को ही बांधते हैं। एकेंद्रिय व विकलेंद्रिय मनुष्यायु व तिर्यंच आयु का बंध करते हैं, यानी एकेंद्रिय विकलेंद्रिय देवायु नरकायु नहीं बांध सकते, ये बात बताएं। एक जीव एक भव में एक ही आयु का बंध करता है, ये सब विशेषार्थ में ही है। वह भी योग्य काल में आठ बार ही बांधता है। वहां सर्वत्र तीसरा तीसरा भाग शेष रहने पर बांधता है। आठ बार ही बांधता नहीं, बांधता ही ऐसा नहीं, बांध सकता है। ज्यादा भी नहीं, यानी वो अपकर्ष काल जो है तो आठ ही बार है, वहां नहीं बंधेगी तो मरण के पहले बनती है। आठ अपकर्ष के कालों में, उसको अपकर्ष काल कहते हैं। आठ अपकर्ष के कालों में पहली बार के बिना द्वितीय अधिक बार में पूर्व में जो वायु बांधी थी उसकी स्थिति की वृद्धि हानि व अवस्थिति होती है। यानी पहली बार जो कोई आयु बंधे है, समझो फिर दोबारा उसकी आयु बंध कर रहा है वह, पहले मनुष्य आयु बांधी हो तो दूसरी बार कौन सी आयु बांधेगा, देवायु के नरकायु, मनुष्य आयु ही का बंध होगा। उसकी स्थिति अधिक भी बांध सकता है, कम भी बांध सकता है, उतनी की उतनी भी बांध सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें सभी पॉसिबिलिटीज है। देखो पहली बार आयु की जो स्थिति बांधी थी उसके पश्चात यदि दूसरी बार तीसरी बार इत्यादि बंधो योग्य काल में पहली स्थिति से यदि अधिक आयु का बंध हुआ है तो पीछे जो अधिक स्थिति बंधी उसकी प्रधानता जाननी चाहिए, यानी पहली बार अधिक आयु बांधी हो तो पहली की प्रधानता कहेंगे, दूसरी तीसरी बार आयु अधिक बांधी तो जितनी अधिक बांधेगी तो उसकी प्रधानता समझनी चाहिए। यदि पूर्वबद्ध स्थिति की अपेक्षा न्यून स्थिति बंधी तो पहले बंदी अधिक स्थिति की प्रधानता जानी चाहिए, जो जितनी मैक्सिमम बंदी है उतनी वहां समझना। आयु के बंध को करते हुए जीव के परिणामों के कारण आयु का अपवर्तन अर्थात घटना भी होता है, इसे अपवर्तन घात कहते हैं। परंतु ये अपवर्तन घात होने के लिए, यहाँ भले उन्होंने लिखा है, उसके लिए आयु का बंध कर रहा हो इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा सैनिक राजा ने पहले सातवें नरक की आयु बांधी तो फिर दोबारा उसने आयु बांधी तभी घटी, क्योंकि सम्यक तो में तो आयु नरक आयु बांधेगा नहीं, दोबारा कैसे बांधेगा। तो उसके सम्यक तो रूप जो परिणाम हुए उसमें बंधी हुई आयु घटी, उसको अपवर्तन घातायुष्क कहते हैं। उसके लिए दोबारा आयु बंध का प्रसंग आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अगर आयु अपवर्तन कहेंगे, अभी अभी क्या स्टेटमेंट किया उन्होंने, यदि दूसरी बार अगर कम आयु बांधता है तो पहली बार के बंधी हुई आयु की प्रधानता समझेंगे, परंतु अपवर्तन घात उसको कहेंगे कि परिणाम के वश यानी बंधी हुई ये विद्यमान आयु में घात होता है वो परिणाम के वश होता है। अभी यहाँ नरकायु बांधी थी और वो कम हुई सैनिक के परिणाम के वश, ऐसा भी होता है देवों की आयु बंधी है ऊपर के देवों का और फिर उनके परिणाम ऐसे हो जाते कि नीचे के संबंधी आयु हो जाती। मान लेते सात सागर की आयु बांधी थी और फिर ऐसे कुछ सम्यक दृष्टि हो तो ऐसे कुछ वो आयु घट गई उनकी, सम्यक तो से गिरा नहीं, अभी आयु ऐसी घट गई उसकी कि नीचे के दो सागर मैक्सिमम होती है ना सौधर्म के, उसमें आधा सागर ज्यादा रहेगी, ढाई सागर हो गया, ढाई सागर बांध नहीं सकता पर ये घातायुष्क होकर तो उसको कहेंगे अपवर्तन घात। कौन से बंधी हुई की बढ़ नहीं, बढ़ने के लिए नया बंध होना चाहिए, क्योंकि उत्कर्षण तभी होता है जब बंध होगा, तो जीव के परिणाम वश बंध नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। क्या कहा? जीव के परिणाम वश बंधी हुई आयु बढ़ नहीं सकती, उसमें कटौती हो सकती है, तो बढ़ भी सकती है ना किसी की। हाँ, उसने दोबारा वही वो दोबारा आयु का बंध किया और अधिक आयु बांधी तो हम कहेंगे उसकी आयु बढ़ी वह, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं बंद होते समय ही उत्कर्षण हो सकता है और वहां उत्कर्षण के बिना भी वो अधिक आयु बांधी ली उसने, तो जो अधिक होती है उसी को प्रदान करते हैं। तो ये जो अपवर्तन घात है वो बंधी हुई आयु में होता है। आप कुछ कह रहे थे अब? हाँ, करते हुए वो ऐसा नहीं चाहिए, आयु के बंध करते हुए ऐसा नहीं है, आयु के बंध के करते हुए बढ़ सकती है, अपवर्तन घात होने के लिए आयु बंध की कंडीशन नहीं है। नहीं देखो, इतने किया, जीव के परिणामों के कारण आयु का अपवर्तन अर्थात घटना भी होता है, परंतु वो आयु के बंध के करते हुए ऐसा नहीं लिखना।
ऐसा हो सकता है आयु में जीव के परिणामों के कारण आयु का अपवर्तन,
वो आयु का लिखा ही है ना, फिर आयु में क्या,
आयु के जगह आयु के बंध करते हुए तो कर देगा,
वे पूरा ही नहीं कर, क्योंकि आगे आयु का अपवर्तन लिखा ही है।
तो क्या लिखना, करते हुए तक सब हटा,
पहले चार शब्द निकालना आयु के बंध को करते हुए, क्योंकि बंध को करते हुए की कंडीशन नहीं है, ये हमने श्रेणी पर घटा कर दिखाया है, क्योंकि दोबारा नरकायु बांधता तो नहीं, यानी हम कंडीशन ऐसे देखते, उसने पहले उपसर्ग किया तभी नरकायु बांधी, कितनी 33 सागर की सातवें नरक की बांधी थी, अब मिथ्यात्व में ही वो फिर दोबारा आयु का बंध करता तो उसको तो एक तो कितना रुकना पड़ता ना, नहीं समझे, वन थर्ड में बांधी है फिर जो वन थर्ड में बांधी उसका और वन थर्ड तक तो उसको तो वैसे मिथ्यात्व में रहता, तो फिर दोबारा नरकायु बांधने का प्रसंग है। उस समय मान लेते कम भी बांधी तो पहले की बांधी हुई तो कम नहीं हो सकती थी। तो जब कम होती है तो उसके आयु के बंध की कंडीशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोबारा कम बंधी तो भी पहली अधिक बंधी हुई हम प्रधानता से देखेंगे, उसी की प्रधानता होगी, उतनी आयु उसको भोगनी पड़ेगी। तो बंधी हुई आयु का घटना परिणाम के कारण होता है, और जो ये तो हम बंधी हुई आयु की बात है, बद्धमान आयु का घटना उसको वो अपवर्तन घात कहा, उसी को क्या कहा घातायुष कभी नाम देंगे, और जो भुज्यमान आयु का घटना होता है उसको कदली घात कहते हैं। मनुष्य तीर्यंचों में जो भुज्यमान जो भोग रहे आयु उसके सारे निषेक नीचे आ जाते हैं, फिर बाद में आयु बनती है वगैरह वगैरह, उसको कदली घात कहेंगे। देखो आगे लिखते हैं, उदय प्राप्त आयु के अपवर्तन को कदलीघात कहते हैं। ऊपर जो बात की थी उदय प्राप्त यानी भुज्यमान जो भोग रहे, और वो किसमें होती है भुज्यमान में मनुष्य और तीर्यंच, और वो भी कौन से तो कर्म भूमि के, क्योंकि भोग भूमि वालों में ऐसा हाँ कदलीघात नहीं होता। यह भी ज्ञातव्य है कि तीसरा भाग अवशेष रहने पर आगामी आयु का बंध होगा ही, इस प्रकार का एकांत नियम नहीं है। उस काल में आयु के बंध होने की योग्यता है, वहां आयु का बंध होवे तथा न भी होवे। इसमें गोमरसार कर्मकांड की बड़ी टीका उसके पृष्ठ और गाथाएं बताइए। उपशांत कषाय गुण स्थान में जब कोई जीव पहुंचता है तब ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय नाम गोत्र तथा अंतराय का बंध रुक जाता है, वहां केवल साता वेदिनी का ही बंध होता है। जब वह जीव गिरकर पुनः सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में आता है तब ज्ञानावरणादि का पुनः प्रारंभ हो जाता है, बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस कारण ज्ञानावरणादि का सादी बंध कहा है। अब ज्ञानावरणादि का जब कहा है तो दसवें में तो ज्ञानावरणादि का है, परंतु मोहनीय का नौवे में होगा। यहाँ उन्होंने इन जनरल बात की है कि ज्ञानावरणादि का ग्यारहवें में जाने पर बंद रुक जाता है, तो मोहनीय के लिए अलग से स्टेटमेंट होगा। मोहनीय का बंद दसवें में ही रुक गया था, नहीं नाम का तो दसवें तक था ना, और फिर उसका साधे कब हो जाएगा नौवे में आने पर, और नौवे में पुनः प्रारंभ होगा। ये हमारा अभ्यास है इसलिए उतना कह सकते हैं ना, हम ये जनरल बात यहां बताइए। इस प्रकार अभी वो ऊपर से ट्रांसलेशन है, ये पहले तो विशेषार्थ उन्होंने कह दिया है। इस प्रकार मूल कर्म प्रकृति के अर्थ पद भंग प्रयोजनभूत पदों के भंग करना चाहिए। इस अर्थ पद से इस बात को लक्ष्य में रखते हुए अर्थात ओग तथा आदेश द्वारा दो प्रकार निर्देश करते हैं, यानी जो हमने देखे थे अर्थ पद, यानी वो सर्व नो सर्व उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य सादि अनादि ध्रुव अध्रुव वगैरह, ये सब उन्होंने अर्थ पद भंग बताए हैं, और उसमें हरेक में ओग में और आदेश में कथन करना चाहिए। ओग का अर्थ सामान्य तथा आदेश का अर्थ विशेष है। ओग से पांच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण मिथ्यात्व सोलह कषाय भय जुगुप्सा तेजस कारमण वर्णादि चार अगुर लघु उपघात निर्माण और पांच अंतराय के क्या सादि अनादि ध्रुव अध्रुव ये चारों बंद होते हैं? तो कहते हैं सादि अनादि ध्रुव अध्रुव बंद होते हैं, चारों होते हैं। अनादि तो है ही है क्योंकि ये ध्रुव बंदी होने से अनादि से बनती है। जब अपनी बंद विच्छित्ति के ऊपर जाके फिर नीचे के गुण स्थानों में आता है तो सादि हो जाता है। ध्रुव तो अनादि से इसलिए ध्रुव है और फिर उसका क्षय करके चला जाता है या बंद रुक जाता है तो अध्रुव है ना। ये चारों है, साता असाता भय जुगुप्सा बिना सात नोकश है, चार आयु चार गति पांच जाति तीन शरीर छह संस्थान तीन अंगोपांग छह सहनन चार अनुपूर्वी परघात उच्छ्वास आतप उद्योत दो विहाय गति त्रसादि दस युगल। कौन से त्रसादि दस? हाँ, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। हाँ, फिर स्थिर 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 वाले स्थिर शुभ सुभग हाँ स्वर आदेय और यशस्वी ये छह और चार ये दस जोड़ी युगल। तीर्थंकर नीच गोत्र उच्च गोत्र इनके क्या सादी आदि चार बंध होते हैं? तो कहते हैं सादी तथा अध्रुव बंध होते हैं। एक तो ये प्रतिपक्षी है कितने ही, और तीर्थंकर में भी जो नरक के सन्मुख है वो मिथ्यात्व में भी जाता है इसलिए वहां सादी कहा। अदरवाइज अन्य जीवों में वो तो सादी है, पहले नहीं था अनादि से बंद नहीं रहता तो सादी है और उसके बाद वो तो बनती रहेगी। फिर भी वो सादी तो इसीलिए कहा कि वो नहीं बन रही थी और बन रही है। नहीं, सबके लिए सादी होगा, आदेश में भी सादी होगा। आदेश की अपेक्षा तो सभी को सादी कहेंगे। नरक में ही वो अभी आया है तभी ये ज्ञानावरण शुरू हुआ, उसकी बात यहाँ नहीं लगेंगे। ऐसा अचक्षु दर्शन में जानना चाहिए। देखो अन्य मार्गणाओं में तो वो मार्गणा ही सादी है, कौन सी मार्गणा अनादि से चल रही है तो अचक्षु दर्शन वाले, क्योंकि सब में अचक्षु दर्शन तो है ही है। भव्य सिद्धिकों में ध्रुव भंग नहीं है क्योंकि वो तो नियम से मुड़ जाने वाले बंध का अभाव करके जाएंगे तो उसके अध्रुव कहेंगे। उसके लिए अनाहारक पर्यंत ऐसा जानना चाहिए, यानी सभी मार्गणाओं में इसको घटित करना चाहिए। बंध स्वामित्व विचय प्ररूपना, जो बंध स्वामित्व विचय है यानी वो बंध का स्वामी कौन है, उसका ओघ तथा आदेश से दो प्रकार निर्देश करते हैं। ओघ से मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग पर्यंत अयोग केवली पर्यंत चौदह जीव समास गुणस्थान होते हैं। उसके लिए नीचे दो आंकड़ा लिखा है, एक तो इमेसिम चौदसन्नम जीव समासानम मगनट मगनट मगनठयाए तथ्य इमानी चौदस चेवठानी नायोगानी भवंती जीवाहा समस्यन्ते येषु इति जीव समासः तेषां चतुर्दशानां जीव समासानां चतुर्दशून स्थानानां इति अर्थः। यानी चौदह जीव समास और चौदह गुणस्थान दोनों प्रकार से अर्थ किए हैं उसके। इन चौदह जीव समासों और गुणस्थानों में प्रकृति बंध की विच्छित्ति कहनी चाहिए। तो ये इन सबकी बंध विच्छित्ति समझनी चाहिए ऐसा लिखा है, तो हमने तो बहुत याद किया है। तो कौन कौन से मिथ्यात्व में सोलह प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, कौन कहेगा? हाँ बोलो बोलो प्रेरणा बेटी।
मिथ्यात्व, मोहलक संस्थान, नपुसके,
सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त द्विंद्रिय बहुत अच्छा। ये 16 अभी यहाँ कैसे लिखा है, वही लिखा है मिथ्या तो अंड संस्थान नपुसक वेद संप्राप्ता सुपाटिका सहन एकेंद्रिय स्थावर आतप सूक्ष्म त्रय विकल त्रय विकलेन्द्रिय और नरगति नरकानुपुरी नरकाय। अब सासाधन में 25 है, मंजू बहन याद है क्या? अनंत अनुबंधी चार बीच वाले नाम क्या है? न्यग्रोध परिमंडल। अरे चार ही ले रहे कुंडक पहले में गया। अब सहनन, अरे वो संस्थान है समचतुरस्र छोड़ो ना फिर आप बस 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 उद्योग स्त्री वेद नीच गोत्र और उद्योग पहले हो गए, वो तीन में नहीं है। अप्रशस्त भी आय होती और फिर दुर्भग दुर्भग दूसर और यशस्वी कीर्ति यहाँ नहीं लेना, हाँ वो छठे में लेना बंद में। देखो यहाँ पढ़ो चार अनंतानुबंधी स्त्यान गद्दी वगैरह तीन दुर्भग तीन चार संस्थान चार सहन बीच वाले दुर्गमन यानी अप्रशस्ति भी आएगा श्रीवेद नीच गोत्र तिरंज गति तिरंजानपुरी उद्योत और तिरंजाय ये चार को एक साथ हम याद कर सकते। गमन यानी विहाय गति अप्रशस्त विहाय गति दुर्गमन कहा उन्होंने तीसरे की कौन बताना चाहते हैं? बंध विच्छित नहीं तो वहां बंध है कि नहीं बंध है कि बाकी का सबका मत कहो। हाँ अभी और चौथे में हाँ 12 कहाँ से 10 लक्ष्मी बताएंगे अप्रत्यय अनंतानुमंदी दूसरे में गए ना हाँ अप्रत्यय हैं चार नारासन बरोबर ये 10 तो इसमें से वो चार छोड़कर बाकी 6 जो है ना यहाँ का मैंने पढ़ा नहीं भी आगे के 6 जो है वो तिरंज और मनुष्यों के लिए दूसरे में उसके बंद विच्छित है। अब यहाँ देखेंगे हम अप्रत्यक्ष है नवरण चार वज्र ऋषभ नाराचंद ही लिखा उन्होंने हाँ वही तो हुंडा हुंडा लिखते हैं हुंडक चार हाँ औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग मनुष्यत्विक तथा मनुष्य। अब पांचवे में हाँ बोलो बोलो अरविंद भाई बताना चाहते हैं बहुत बड़ी बात है
इसलिए आप भी बोलते हो रहे
प्रत्येक है ना अरंचार। अब छठे की बात याद है क्या मंजा में अस्थिर अशुभ असाता वेदनीय अयशस कीर्ति अरति और शोक ओ ओ ओ है लास्ट में शोक हाँ सातवें में देवायु अब आठवें किसको याद है? आठवें का पहले भाग में दो निद्रा और प्रचला, छठे में तीस की और सातवें में चार की। सातवें में बोलो हास्य रति भय जुगुप्सा। अब ये तीस कौन बोलेगा? आपके पास माइक है, आप ही बोलो। हाँ, बीच बीच में इस लाइन से ले लो। हाँ, तीर्थों का निर्माण प्रशस्त व्यागत। अभी गति जाती ऐसे करो, अभी गति जाती से शुरू करो ना। अभी पंचेंद्रिय जाती है, गति कौन सी बांध रहे हैं? अरे देवगति, देवगति यानी देवद्विक लिया। अभी उसके साथ शरीर कौन सा बांधेगा? वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग, और उसके साथ आहार आहार अंगोपांग भी कोई बांध सकता है। तेजस कर्मण तो बनती है, उसको भी ले लेना। फिर समझो त्रस्त संस्था। अब उसके बाद वर्णादि चार लिए, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। फिर अस्थिर नहीं लेना, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर और आदि। यशस कीर्ति को छोड़ना, वो तो दसवें तक बंदेगी। अभी यहाँ पढ़ेंगे, अभी हम अपूर्वकरण में निद्रा प्रचला ये प्रथम भाग में, छठे में तीर्थंकर निर्माण प्रशस्त विहाय गति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस कारमाण, आहार द्विक, समचतुरस संस्थान, सुरद्विक यानी देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग, वर्णादि चार, अगुण लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, सिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय। चरम मैंने सातवें भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा। अब अनिवृत्तिकरण में बोलो। हाँ, अब चार कहते कि पांच कहते? पुरुष वेद और संज्वलन चार बंद वहां तक है ना। अभी नौवे में दसवें में तो बंद नहीं है उनके, क्रोध मान माया लोभ सभी को ले लें। तो यहाँ कहते प्रथम भाग में पुरुष वेद, दूसरे में संज्वलन क्रोध, तीसरे में संज्वलन मान, चौथे में संज्वलन माया, पांचवे में संज्वलन लोभ। ये बंद की अपेक्षा पांच भेद किए उन्होंने। सूक्ष्म सांप्राय में सोलह, कौन से सोलह? ज्ञानावरण पांच, पांच अंतराय, चार दर्शनावरण, बहुत अच्छा यशस कीर्ति उच्च। वहाँ बंद कितनी रही थी? सत्रह। उसमें एक वेदनी रह गई जो ग्यारहवें में बारहवें में तेरहवें में बंदेगी, परंतु उपशांत कषाय क्षीण कषाय में तो बंध विचित नहीं है, क्योंकि एक की एक बनती रहती है, उसका बंध की विचित नहीं होती है। तेरहवें में वो बंध रुक जाएगा, जो चौदहवें में नहीं है तो बंध विचित तेरहवें में कहेंगे। तो तेरहवें में वो साता वेदिनी के बंध विचित थे। तो उन्होंने गोमर साध कर्मकांड की अपेक्षा से यहां लिख दिया। अब मूल पुस्तक की बात करेंगे। पांच ज्ञानावरण, चतुर्दंशनावनीय, चार दर्शनावरण, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र तथा पांच अंतरायों का कौन बंधक है कौन अबंधक है? तो दसवें में बंधक इच्छित होती है, पहले से वो बंध गई। तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत पर्यंत बंधक है, परंतु यशस कीर्ति और उच्च गोत्र में ऑप्शनल है ना, वो लगातार बंध नहीं है। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण में हम कह सकते हैं, अंतराय में कह सकते हैं, वैसे उसका बंधक तो है परंतु उसके प्रतिपक्षी भी है। ज्ञानावरण के लिए उसका प्रतिपक्ष नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत द्रव्य के दौवाय सूम सांप्राय शुद्धि संयत संज दौवाय द्रव्य की क्यों कहा? संजद एक शब्द है, वो संजय के बाद उन्होंने संजद अवाये यानी संयत के चरम समय तक पहुंचकर अंत में बंध की विच्छित्ति हो जाती है। ये संजय दौवा है, चाहिए वो दौवा द्रव्य का दौवा नहीं है, वो उसके जो फुल स्टॉप पड़ा है ना संजय के और द के बीच में, वो संजय का एक शब्द है,
वो जीरो निकाल देंगे ना।
देखो मैं बताती हूँ आपको, जरा आगे के पेज 39 पर देखना, लास्ट लाइन प्राकृत की, मिच्छा दिट्ठी प्रबुद्धि या वो असंजद, फिर उन्होंने वो तो फुल स्टॉप दिया ना, वैसे यहाँ शुद्धि संजद चाहिए और उसके बाद वो नहीं भी देते, शुद्धि संजद वाए एक शब्द चाहिए था। वो भी संजय दवा एक शब्द चाहिए, जीरो निकालना और नीचे उसका जो अर्थ जो है, अर्थ में द्रव्य की नहीं लेना, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत के बीच में द्रव्य निकाल दो। इसलिए आदि के 10 गुण स्थान वाले जीव बंधक है, शेष अबंधक है। ये उल्टे क्रम से अभी कौन कहां बंधक है अबंधक है उसकी, जहां जिसकी विच्छित्ति होती है वहां तक के वो बंधक है, उसके बाद वो अबंधक है। जैसे यहां जो पूछा था ये 16 की, 10वें तक बंधक है, ऊपर के 11वें 12वें वो अबंधक है। स्त्यान वृद्धि त्रिक अनंतानुबंधी चार स्त्री वेद, तिरंज आयु तिरंज गति चार संस्थान, ये किसकी बात हो रही है, दूसरे में जो विचित्ति होती है, चार सहनन तिरंज गति प्रायज्ञान पूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दूसर अनादेय तथा निज गोत्र के बंधक और अबंधक कौन है, मिथ्या दृष्टि से सासाधन सम्यक्ति पर्यंत बंधक है, ये बंधक है शेष अबंधक है। इन प्रकृतियों के दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति बंध विच्छित्ति है, उसी का अर्थ ये प्रकृतियां मात्र पहले और दूसरे गुणस्थान वाले ही बांधेंगे, ऊपर के नहीं बांधेंगे। बांधेंगे ने वो बांध सकते, जैसे उद्योत है बंधेगी बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, बांधते इसका अर्थ बांधते ही ऐसा भी नहीं लेना, कौन बांधते तो ये दो गुणस्थान वाले बांधेंगे, यथा योग्य जहां बंध योग्य हो वहां बंधेगी। हाँ बंध विच्छित्ति का ये प्रकरण, ये बंधक अबंधक का अर्थ है, कौन से बांध रहे ने, जो अबंधक कौन है, जहां बंध विच्छित्ति उसके ऊपर के गुणस्थान वाले अबंधक है, वहां तक के बंधक है ऐसा कहेंगे। निद्रा प्रचला का कौन बंधक है कौन अबंधक है, कौन कहेंगे अभी, हाँ भाग तक बंधक ऊपर अबंधक। मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमकों तथा क्षपकों पर्यंत बंधक है। अपूर्व करण के काल में संख्यातवे भाग बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, यानी सातवां भाग बीतने पर है ना, पहला भाग यानी 7 भागों में से पहला भाग, ये बंधक है शेष अबंधक है। अब साता वेदनीय का कौन बंधक अबंधक है, तो कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, हाँ पहले से पहले मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत बंधक है। संयोग केवली के काल के अंतिम समय व्यतीत होने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है शेष अबंधक है। ये व्यतीत होने पर जब कहेंगे तो ये कौन सा नए लगाया उन्होंने, पर्यायार्थी, उसका दूसरा नाम क्या है, अनुच्छेद, अनुत्पाद अनुच्छेद, अनुत्पादानुच्छेद, यानी उसके व्यतीत होने पर बंध की विच्छुति कहा ना, हम कहेंगे उसी मंजू बहन को याद है उन्होंने, आपने किया, प्रेरणा बहन ने बताया, फिर आ गया अनुच्छेद बराबर याद आ गया आपको। ये तो साता की बात होगी। असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ अयशस कीर्ति के कौन बंधक है कौन अबंधक है, तो मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक बंधक है, ये बंधक है शेष अबंधक है। देखो एक बंध विच्छुति हमने याद की थी तो बाकी कितना सरल हो जाता है, अभी ये समझने में आसान होता है, नहीं तो क्या पढ़ रहे कौन सी लिस्ट है कुछ नहीं समझ में आता। बेसिकली थोड़े प्रकृतियां याद हो जाए और बंध विच्छुति हो जाए तो बहुत सारी बातें सरल हो जाती है। हाँ हम प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं। कर्मकांड हुआ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, जीव कांड में भी हुई थी और उसमें भी आई थी। कर्मकांड के शुरू में तो बहुत सारी बातें देखी,
पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ने के बाद तबला जय दरबार
हुआ। सम्यक ज्ञान चंद्रिका वही बेस है और उसमें तो सभी बातें है। अभी जय दरबार में भी हाँ, जयधवला में कैसे आगे पीछे से पहले कभी सूत्र कभी है, यहाँ तो कंटिन्यूएशन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं पूरा इन डिटेल, उसको समझकर हमने धवला जयधवला पूरी पढ़ी तो कितना आसान हुआ हमारे लिए, उसको समझने के लिए बार बार उसका रेफरेंस दिया। ये तो पूरी विस्तार ही है। नहीं मुझे नहीं लगता कुछ कही नहीं होगा। हाँ क्योंकि हमारे ये जो कर्मकांड वगैरह जो ग्रंथ है गोमटसार जो रचना हुई है इन्हीं जो मूल बातें चली आई थी उसी के आधार से हुई है। देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वे षटखंडागम के ज्ञानी थे और उन्होंने उस सबका सार उसमें लिख दिया है और समय ज्ञान चंद्रिका में और भी आसान सरल करके और भी उसका टीका उसकी रखी गई। आगे हमने क्या किया, हमने कुछ हाँ देखो अभी मिथ्यात्व नपुसक वेद नरकायु नरक गति चार जाति कुंडक संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन नरक गति प्राज्ञानुपूर्वी आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त तथा साधारण का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, ये मिथ्या दृष्टि बंधक है क्योंकि वहां बंध की विच्छित्ति होती है, शेष अबंधक है। अप्रत्याख्यानावरण चार मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्र विषम नारा सहनन मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी का कौन बंधक है कौन अबंधक है, कौन सी रहेगी मनुष्य रहेगी क्या
मनुष्य
आयु कहाँ है,
मनुष्य
आयु भी डालना चाहिए ऊपर क्या लिखा है अपचख्याना वर्णी चार मनुष्य गति ओराले सिर ओराले अंगोपांग वज्र संग मनुष्य गति पावगण पूरी को बंधको को हाँ मनुष्य आयु डालना है इसमें हाँ रह गया और प्रत्येक मनुष्य गति मनुष्य आयु लिख सकते हैं हम ऊपर भी उन्होंने आयु और नरकायु नरक गति लिखा था ना कहीं पर भी डालो मनुष्य आयु लिखना रह गया है वो डालेंगे हाँ क्या है ये कॉपी करके लिखने वाले होते थे ना रह जाते हैं अभी हम देखते हैं अब बीडीटीपी बनाते हैं या कुछ करते हैं तो हम भी स्वयं लिखते तो एकाध बात रह जाती बीच में वो अपचक खाना वाले चार है ना मनुष्य गति ओराले से वहां मनुष्य भी लिख देना निरयाव मनुष्यायु प्राकृत में कैसा लिखा था मनुष्यायु लिखा था कैसे लिखा था अरविंद जरा देखना पहले मनुष्य आयु चार प्रकार के आयु में मनुष्य आयु लिखा होगा प्राकृत में। चार प्रकार के आयु तो नहीं लिखा है, दर्शना वर्ण आदि। नाम कर्म के पहले हो गए ना ये 33 पेज पर। आयुगस्य कुम्भस्य चत्वारि पगदीयो इतना ही लिखा है। मनुष्यायु होना चाहिए, मेरे आयु मनुष्यायु, मनुष्यायु लिख रही थी 40 पर, मनुष्यायु। हाँ मैं वही बता रही थी, मनुष्यायु वहां डालना, मनुष्यायु। इन्हें इतने बंधक है, बाकी अबंधक है। अभी आते हम 40 पृष्ठ पर। प्रत्याख्यानावरण चार का कौन बंधक है कौन अबंधक है, तो ये तो पांचों गुण स्थान में बंधित चित्ते, तो कहते मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत पर्यंत बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। पुरुष वेद संज्वलन क्रोध का कौन बंधक है अबंधक है, कौन रह गया, कौन बंधक है, को बंधक हो को अबंधक, कौन बंधक है कौन अबंधक है। मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण में उपशमक शपक पर्यंत बंधक है। अनिवृत्ति बादर के काल के संख्यात भाग बीतने पर विच्छित्ति होती है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। यानी संख्यात बहुभाग तक बंधक है, पहला भाग इन्हें इक्वल नहीं है सारे। वेद का उदय चलता है ना, इसलिए संख्यात भाग, संख्यात भाग यानी संख्यात बहुभाग। संख्येत जा लिखा था ना ऊपर, संख्येत जा भागम गंतुन, इसका अर्थ होता है संख्यात बहुभाग। ये अपने समझने के लिए। मान माया संयोलन में भी यही बात जाननी चाहिए, विशेष यह है कि शेष शेष के संख्यात भाग बीतने पर्यंत बंद होता है, यानी जो रिमेनिंग है उसका बहुभाग, उसका बहुभाग। शेषे शेषे संख्येत जा भागम गंतुन बंधा, ये बंधक है, शेष अबंधक है। इसी प्रकार संज्वलन लोभ में है, विशेष अनिवृत्तिकरण के काल के चरम समय पर्यंत बंद होता है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। हास्य रति भय जुगुप्सा का कौन बंधक है, यानी आगे पीछे कैसे भी लिया है। हाँ, मिथ्यात्व से लेकर अपूर्वकरण के उपशमक तथा क्षपक पर्यंत बंधक है। अपूर्वकरण के चरम समय के बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। ओ मनुष्यायु का यहाँ लिया, तीसरे गुणस्थान के छोड़ने के लिए उन्होंने लिया, वहां नहीं चाहिए के लिए। तीसरे में बनती नहीं इसलिए वहां छोड़ दिया था उन्होंने, वहां से निकालो। इन्हें उन्होंने अलग उसको लिया है आगे, इसलिए यहां पर नहीं लिया, क्योंकि बाकी तो सभी बांधते हैं ना, तीसरे गुणस्थान वाले भी बांधते हैं, तो पर्यंत सभी ले लिए ना, तो पर्यंत में तीसरे गुणस्थान को छोड़ना था, इसलिए उसकी बात आगे बताएंगे। जो अभी हमने मनुष्यायु डाला था ना, क्योंकि उसमें तीसरे गुण स्थान वाला नहीं बांधता है आयु को, इसलिए उसको छोड़ दिया। इसलिए आयु की बात वो अलग से बताएंगे, तीसरे गुणस्थान के ऊपर जहाँ आयु की बंद विच्छित्ति है उसको अलग से बताना पड़ेगा। हाँ, देवायु को भी वो तो है भी ऐसी, फिर भी तीसरे को छोड़कर ऐसा कहेंगे, वहाँ नाम लेके उसको छोड़ेंगे बीच में। तो ये यहाँ आयु को लिया, मनुष्य आयु का कौन बंधक है कौन अबंधक है, मिथ्या दृष्टि सासादंत तथा असंयत सम्यक भी बंधक है, ये बंधक है शेष अबंधक है। देवायु का कौन बंधक है कौन अबंधक है, ये लिया ना देवायु को, मिथ्या दृष्टि सासादन असंयत सम्यक भी संयता संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत बंधक है। अप्रमत्त संयत के काल के संख्यातवे भाग बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है शेष अबंधक है। ऊपर भी लिखा ना, संख्य यदि भागम गंतु न बंधो एदे बंधा, यानी जिन्होंने छठे गुणस्थान में आयु का बंध किया है शुरू, वो आगे चलकर सातवें तक कुछ काल तक बन सकता है। एक तो वहां नए से आयु का बंध शुरू नहीं होता है, और वो भी सातवें के पूरे काल तक ये नहीं चल सकता, उसका जो कुछ संख्यात भाग तक ही बनता है, संख्यात्वे भाग तक ही बनता है। देवगति पंचेन्द्रिय वैक्रेक शरीर तेजस कर्मा समचतुरस संस्थान वैक्रेक अंगोपांग वर्णादि चार देवानुपूर्वी अगुरु लघुआदि चार प्रशस्त विहार गति, जो नहीं डाला था वो त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक भी इन्होंने लिख दिया। सिर शुभ शुभ सुस्वर आदेय निर्माण का कौन बंधक अबंधक है, यानी कौन बंधक है कौन अबंधक है। तो हमने देखा इनकी विच्छित्ति कहाँ होती है, आठवें के छठे भाग। मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान के उपशमक शपक पर्यंत बंधक है। अपूर्वकरण के संख्यात्वे भाग बीतने पर, संख्यात भाग बीतने पर, संख्यात्वे क्यों, संख्यात यदि भागम अपूर्वकरण संख्यज्जा भागम गंतुन, संख्यज्जा यानी संख्यात बहुभाग है, क्योंकि सात में से छह भाग जाने पर होता है ना, संख्यात वे भाग नहीं संख्यात बहुभाग, वो वे के जगह बहु करना, संख्यात बहुभाग बीतने पर, यानी सात में से छह भाग। बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है शेष अबंधक है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का कौन बंधक है कौन अबंधक है, देखो इनको अलग से इसलिए निकाला, बंध विच्छित्ति तो हमें एक साथ दी थी, केवल बंध विच्छित्ति नहीं, ये कौन बंधक है, तो जो पहले से लेकर वहां तक बनते हैं उनकी लिस्ट अलग दे, और ये तो मात्र सातवें आठवें में बंधेंगे, पहले भी नहीं बांधते बाद में भी नहीं बांधते। तो यहाँ कहते अप्रमत्त और अपूर्वकरण के संख्यात्वे भाग व्यतीत होने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है शेष अबंधक है। अब यहाँ हमारे हमें पता ही है कि सातवें आठवें में ही बंध है, अन्यत्र नहीं। ये पहले छह गुण स्थान में भी बंध नहीं है और ऊपर भी नहीं। अब यहाँ शंका समाधान चलो, नहीं तीर्थंकर प्रकृति करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है कौन अबंधक है। असंयत समय दृष्टि से अपूर्वकरण पर्यंत बंधक है, अपूर्वकरण के संख्यात भाग बीतने पर, ये संख्यात भाग बराबर है यानी छह भाग, संख्यात भाग कहाँ पर संख्यात जब वहाँ पर भी संख्यात भाग चाहिए, वे नहीं चाहिए। बहुभाग यानी संख्यात भाग लिखो यानी बहुभाग है, उसका अर्थ होता है बहुभाग। संख्यात भाग का ही अर्थ होता है संख्यात बहुभाग। तो तीर्थंकर प्रकृति का कौन बंधक है, कौन तो चौथे से लेकर आठवें तक अपूर्वकरण के संख्यात बहुभाग बीतने पर बंध की विच्छित्ति होती है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। शंका, कितने कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है? नाम गोत्र लिखा है ना यहाँ, तिथेर नामा गोदकम्बम बंधदी, हमेशा तीर्थंकर गोत्र कहते हैं ना स्वामी जी। क्योंकि ये क्या है, जहां तक गति बनती है ना तब वहां तक वो बनता है, इस कारण वो नाम गोत्र को चेसा। पहले जयरोला में इसका एक्सप्लेनेशन आया था एक बार। समाधान, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु निरतिचारता, आवश्यकेषु अपरिहीनता, क्षणलव प्रतिबोधनता, ऊपर क्या लिखा है, क्षणलव परिमच्छ बुच्छनदाय, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधु समाधि संधारणता, वैयावृत्ति योग युक्तता, साधु प्रासुक परित्यागता, अरहंत भक्ति, बहुषत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। नाम गोत्र कर्म का अब विशेषार्थ, यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि जब अन्य कर्मों के बंध के कारण नहीं बताए गए, तब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों का सूत्रकार ने क्यों पृथक रूप से उल्लेख किया है? नीचे कुछ लिखा, देखो, कथम तिथेरस नाम कम्मा वयवस्य गोदसन्ना, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का भेद होने पर उसको गोत्र क्यों कहते हैं? न उच्च गोद बंधा अविना भावितनेन तिथेरसवि गोदत्त सिद्धोदो, बंध सामित्य विचे पृष्ठ 28 ताम्र प्रति प्रति, यही यानी महाबंध को ही उसमें तीर्थंकर नाम ये नाम कर्म की प्रकृति उसको गोत्र क्यों है कहते हैं, क्योंकि वो गोत्र कर्म के बंध सहित ही बनती है। उच्च गोद बंध अविनाभावी, ये नीचे अलग से उसका समाधान होगा। अभी हम ऊपर का विशेषार्थ पहले पढ़ते हैं, ऊपर पढ़ेंगे अभी समय हो गया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो